नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास फिर एक बार। दोस्तों, आज एक बात कहनी है जिसमें बोध भी है और वार्ता भी है। इसका शीर्षक है सत्यव्रत। अब बात कुछ ऐसे है, एक गांव में, वो गांव के बराबर बीचों बीच एक धर्मशाला का मकान था और धर्मशाला के मकान के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उसमें हर रोज दोपहर को एक संत अपने प्रवचन देते थे। अक्सर उनके प्रवचन का विषय नीतिमत्ता बढ़ाना या व्यसन मुक्ति या ऐसा कुछ समाज सुधारना का रहा करता था। तो लगातार इनके ये प्रवचन चलते थे और साधु तो चलता पड़ा। एक दिन ऐसा समय आया कि उन्होंने बोला कि अब मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों के साथ हूँ, अब मैं यहाँ से फिर परिभ्रमण में चला जाऊँगा। आज चूंकि अपनी ये सत्संग सभा का आखिरी दिन है, इसके परिपाक रूप मैं आपसे एक छोटी सी बात चाहूँगा दक्षिणा में। सब लोग तैयार हो गए, बोले बताइए महाराज जी, हम आप क्या चाहते हैं, हम हमारी क्षमता के अनुसार जो भी हो सकेगा करेंगे। तो संत बोले मैं हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें आपसे एक वचन चाहिए और वो वचन होगा कोई भी एक कुलक्षण या कोई आप व्यसन करते हैं तो व्यसन या अन्य कोई आप में त्रुटि है कुमार से चलते हैं तो छोड़ने का। सबको लगा इसमें क्या है, तो अपनी भलाई की बात है, संत बोल रहे हैं तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं, इनको तो कुछ लेना नहीं इसमें। तो सब उठ के अपनी अपनी बात जगह पे, किसी ने बोला हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, चाय नहीं पियेंगे, सिगरेट नहीं पियेंगे, बीड़ी नहीं पियेंगे, किसी ने बोला कि हम काफ़ी महंगे कपड़े विदेशी बनावट के लाते हैं, वो नहीं लाएंगे, देश में बने हुए कपड़े पहनेंगे, ऐसे ऐसे बात चलती रही। अब करीब करीब ये सब जो जिसको जो व्रत लेना था वो मुद्दा ख़त्म होने आ रहा था। संत देख रहे थे कि एक आदमी आता था हर रोज, एक दिन भी उसने ये सत्संग सभा का एक दिन भी उसने छुट्टी नहीं ली। वो आता था पिछली सबसे पिछली हर रोज में बैठता था, अक्सर उसके मुंह पे बुकानी लगी रहती थी तो उसका मुंह शुद्ध स्पष्ट से दिखाई नहीं देता था। तो सब लोगों ने ले लिए व्रत, तो महाराज जी ने बोला कि अरे भाई आपने कोई व्रत नहीं लिया। बोला क्या व्रत लूं मैं, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं व्रत लेके छोड़ सकूं। महाराज ने बोला क्या करते हो तुम, तो ये इंसान भी गजब का इंसान था, उसने बोला चोरी करता हूँ, चोरी करके मेरा गुजारा करता हूँ। तो संत ने बोला बस यही तो करना है आपको, आप आज व्रत ले लो, आप आज आप चोरी छोड़ दोगे अब से। तो चोर ने बोला संत महाराज ये बात तो आपने अच्छी कही, ये बात मैं करना भी चाहता मगर अगर वो करूँगा तो मैं और मेरा परिवार भूखे मरेंगे, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, तो मेरा व्यवसाय है। तो संत ने बोला कि क्या छोड़ सकते हो फिर, तो कई ऑप्शन दिए। फिर वो विकल्प के बाद संत ने कहा कि एक आप मुझे बात कह सकते हो, तो चोर ने बोला कि क्या बताइए आप, अगर मेरे से हो सकता है तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। तो संत ने बोला आज से व्रत लेंगे आप कि आप हमेशा सच बोलोगे। तो चोर ने दिमाग में सोचा कि अरे सच बोलने में क्या गवाने का है मुझे, उसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है, सच बोलने का है तो ठीक है। तो उसने व्रत ले लिया कि आज से सच बोलेंगे, और चूंकि उसने सच बोलने का व्रत लिया वो संत पुरुष ने उनका नाम बदल कर सत्यव्रत रख दिया। बोला आज से तुम सत्यव्रत के नाम से जाने जाओगे, ताकि तुम्हें हमेशा पता रहे कि सत्य लेना, सत्य बोलना, सत्य व्यवहार करना, इसका व्रत आपने लिया है। तो चोर बोला ठीक है, सभा बर्खास्त हुई, वो अपने घर पे गया। थोड़े दिन बीते होंगे, एक रात को वो राजा की जो कोठार थी वहाँ तक जाने में सफल हो गया। उसने अपने पास जो चाबियां का जुड़ा रहता था उससे सिफत से उसका दरवाजा खोला, अंदर गया। अंदर तो अंधकार था, उसने अपनी जेब में मोमबत्ती और दियासरी की पेटी थी, मोमबत्ती जलाई और एक नज़र वहाँ क्या क्या था उस पर डाल दी। उसने देखा कि एक बहुत अच्छी गुलाबी रंग की एक छोटी सी डब्बी वहाँ पड़ी थी, बड़ी आकर्षक थी। चोर ने उसे हाथ में ली, खोला, देखा उसमें चार रत्न थे। चोर ने बोला अरे ये तो बहुत पानीदार रत्न है, काफ़ी पैसे इससे मिल सकते हैं। तो उसने उसमें से एक रत्न लिया, बोले एक रत्न मेरा जिंदगी भर चलेगा, मेरा और मेरे कुटुंब का पूरा खर्च निकल जाएगा इसमें से, एक साल दो साल जब तक हम जिएंगे तब से। उसने एक रत्न लिया, बाकी डब्बी वहाँ रख दी और जस का तस वो किवाड़ अटका के वो दरबारगढ़ से बाहर निकल के जा रहा था। जब वो जा रहा था बाहर, तब उसने देखा कोई आ रहा है अंधेरे में, तो रुक गया। तो वो आने वाली आकृति नज़दीक आई तो उसने उससे पूछा कौन हो तुम? चोर ने बोला चोर हूँ, क्योंकि वो सच बोलना था। अच्छा तुम चोर हो, कहाँ गए थे? बोले राज दरबारगढ़ में। क्यों? बोले राजा के कोठार में आज हमने चोरी की। तो क्या मिला तुम्हें? ये एक रत्न हम चुरा के लाए हैं। तारों के बिखरे हुए तेज में भी वो रत्न जब हाथ में रखा उसने तो वो जगमगा रहा था। तो उस आदमी ने पूछा कि कहाँ से लाए? वो कोठार से। तो कोठार में एक ही रत्न था? बोले नहीं, ये जो डब्बी है उसमें चार रत्न थे, मगर मैं एक ही लाया हूँ। बोले मूर्ख हो तुम, चारों चार ले आते। बोले क्यों? चारों चार की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये एक रत्न ही इतना कीमती है कि मेरे पूरे परिवार का गुजारा जब तक हम जिएंगे तब तक होगा। अब जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है वो बाकी के तीन रत्न मुझे क्यों लाना, तो मैंने नहीं लिए। और आया, अच्छा अच्छी बात है। तो उसने पूछ लिया राजा से कि आप कौन हो? राजा ने बोला मैं यहाँ का राजा हूँ और नगरचर्या करने के लिए निकला हूँ। जब तुमने सच सच अपनी बात बताई तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आप इस राज्य के शासक से मिल रहे हो और आपने उसके ही भंडार में चोरी की है। चोर थोड़ी देर के लिए तो शक पका गया उसने, मगर राजा ने बोला कोई भय की बात नहीं, तुम्हारा एड्रेस दे दो। तो उसने एड्रेस बताया अपना, बोले अब जा सकते हो। वो चला गया अपने घर, राजा आया महल में सो गया। दूसरे दिन सुबह में चौकियात ने देखा कि भंडार का किवाड़ थोड़ा अटका के रखा हुआ है, खुला है। तो उसने देखा कि ताला किसी ने खोला है और कोई भंडार में जाकर बाहर निकला है, डोर किवाड़ जो है वो अटका के छोड़ के गया है। तो उसने जाके बताया कि हमारे भंडार में चोरी हुई है। प्रधानजी बोले चोरी हुई है कैसे बोलेगा? बोले साहब ये जो प्रधानजी ये भंडार का जो किवाड़ दरवाजा है वो खोला गया है और खोल के कोई अंदर गया है, तो अंदर भंडार में जाएगा तो वो चोरी किए बिना थोड़ा निकलेगा, तो हम मानते हैं कि कोई चोरी हुई। तो प्रधानजी ने बोला कि ठीक है तुम जाओ। उन्होंने जाके राजा से बात की कि शहंशाह ये जो हमारी भंडार है उसमें किवाड़ खोल के किसी ने चोरी की। तब तक तो दरबार लग गया था, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। दरबार में बात चर्चा का मुद्दा था कि राज के भंडार में चोरी हुई है, तो सब सब पकाए हुए थे, इंतजार था क्या हुआ होगा, कितनी चोरी हुई होगी। तो ये लोग अटकलें लगा रहे थे। तब महाराज ने बोला कि देखो भाई कोठारी जी, आप इस भंडार से सुविदित हो, तो आपसे मैं जब कहूँ तब आप जाके मुझे इसका ब्यौरा देना कितनी चोरी हुई। मगर इसके पहले हमारे जो चुनंदे सैनिक है जो बहुत काबिल है उनको ये तपास करने भेजो कि क्या कोई चोर आया था नहीं आया था। इसी बीच कोठारी जी आप जाइए और क्या चोरी हुई है बताइए। कोठारी गए, उन्होंने देखा कि सब वहाँ चीज़ें तो सलामत थी, सबसे वो परिचित थे, उनका ही ये ड्यूटी थी कि इसकी खातरी करके रखें। वो गुलाबी रंग की डिब्बी जो है उसमें उन्होंने देखा खोल के तो 3 रत्न थे। बोले ये 4 होने चाहिए, 3 है, बिल्कुल चोर एक ले गया। तो उन्होंने बाकी के 3 अपने जेब में डाल दिया कि मूर्ख है, यहाँ तक आया था तो ये 4 रत्न ले जाना था, एक लेके गया। तो वही चोर भी कोई मूर्ख का सरदार लगता है। वापिस आए और इन्होंने राजा को बताया कि महाराज वो हमने अभी अभी जयपुर से जो खरीदे थे गतमा, वो रत्नों में से जो हम गुलाबी डब्बी में रखते थे वो पूरे के पूरे गायब हैं। महाराज ने बोला पूरे के पूरे गायब हैं? बोले हाँ महाराज। ठीक है आप बैठिए, आप सब बातें करें, आराम से जलपान करें। प्रधान जी आप आपके सैनिकों को सेनापति जी और आप मेरे के चारों और भेज दो, एक रत्न का ये चोर ज़्यादा दूर तो गया नहीं होगा, गत रात को ही चोरी हुई है, यहाँ ही रहता होगा तो ढूंढ निकालो। तो गए लोग, काफ़ी तलाशी ली, काफ़ी छानबीन की, पूछताछ की, कहीं चोर नहीं मिला। तो ये वापिस आए, बोले महाराज चोर का पता तो हम नहीं लगा पाए क्योंकि हमें उसका न तो हुलिया मालूम है न तो नाम मालूम है, पता लगाए तो कैसे लगाए। राजा ने बोला सही बात है, अच्छा एक काम करो, लो ये 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 पते पे जाओ आप और वहाँ आपको सत्यव्रत नाम का एक आदमी मिलेगा, उसको बुला के लेके दरबार में आ जाओ। तो गए वहाँ, चोर तो आराम करता था, सुस्ता रहा था, उसने देखा कि राज के सिपाही आए हैं तो समझ गया कि नक्की राजा ने ही भेजे होंगे। खैर उसको पछतावा होने लगा कि मैंने सत्य वचन बोल के क्या सत्यानाश किया, अब मुझे पकड़ के ले जाएंगे, फांसी पर लटका देंगे या तो कोड़ों की सजा करेंगे, जेल में डाल देंगे। घबराता वो भी साथ में चला, देखो मैंने अपने व्रत का पालन किया है, अब जो भी होना है हो। दरबार में गया तो राजा ने बोला क्या नाम है तुम्हारा? बोला सत्यव्रत। क्या काम करते हो? चोरी करने का। कल रात तुमने कहाँ चोरी की? बोले आपके भंडार में। अच्छा राज के भंडार में तुमने चोरी की? बोले हाँ महाराज। क्या चुराया? बोला एक रत्न चुराया। क्यों एक ही रत्न लिया, किसमें था वो? वो बोला गुलाबी डब्बी है उसमें था, 4 थे मगर मैंने एक ही लिया क्योंकि मेरे और मेरे परिवार के लिए जीवन भर का खर्च इसमें से निकल सकता था तो मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक लिया, बाकी के जस के तस रख दिए। अच्छा राजा ने बोला देखिए प्रधान जी, सेनापति जी, अलग से आप कोठारी जी को एक कक्ष में ले जाइए और उनकी जांच की जाए, तपास की जाए, जड़ती ली जाए। लेके गए, पता चला कि उनकी जेब के अंदर एक छोटा सा एक और पॉकेट था, उसमें से 3 रत्न बरामद हुए। वापिस आए, आके महाराज के सामने पेश किए कि महाराज ये 3 रत्न हमने बरामद किए हैं कोठारी जी के जेब से। अच्छा, तब महाराज ने कोठारी की ओर देखा, बोला देखो ये आदमी वो गरीबी में जीता है, चोरी करके अपना गुजरान चलाता है, वो चाहता तो चारों 4 रत्न ले जाता मगर उसने नहीं लिए। क्यों? क्योंकि एक से ही वो संतुष्ट था कि पूरी जीवन भर की उसकी जो भी खर्ची है वो इससे निकल जाएगी, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसे नहीं चाहिए। तो ये चोर, उसको ज़रूरत नहीं थी वो नहीं लिया। आपको राज की ओर से तगड़ा पगार मिलता है, महल मिला है, नौकर चाकर मिले हैं, दास दास आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं, अच्छा सा आपकी आपका जो राज दरबार में भी आपका एक अच्छी सी पोजीशन है, जैसे प्रधान जी और सेनापति जी उच्च आसन पर बैठते हैं, आप भी उच्च आसन पर आरूढ़ होते हैं। ये सब होते हुए भी आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको राज जितना पगार देता है उस पगार में से आपके 7 पीढ़ी तक पैसे चल सकते थे, मगर आप अपने लोभ को नहीं रोक पाए और लोभ वृत्ति से आपने ये बाकी के 3 रत्न भी चुरा लिए। तो मैं आपको जन्म कैद की सजा करता हूँ। आपके पास से बरामद हुए 3 रत्न राज की संपत्ति है, उसको हम जब्त करके राज के भंडार में रख देते हैं। फिर वो चोर को बोला कि तेरे पास जो रत्न तूने चुराए वो कहाँ है? बोला मैंने छुपा दिया है घर में। बोले कहाँ छुपा दिया है? बोले उस फला फला जगह पे इसको छुपा है। तो 2 सिपाहियों को भेजा, जाओ लेके आओ। बोले सही कहता है ना? बोले हाँ। तो गए सिपाही, कुछ देर के बाद वापिस आए और रत्न बरामद हुआ। बोले हाँ महाराज, एक रत्न मिल गया है, वही रत्नों में से था। तो महाराज ने वो जो सत्यव्रत नाम का चोर था उसे, उसने लोभ पे जो काबू पाया, सच्चाई का शरण लिया और कोई गलत उसमें ऐब नहीं थी, उसने बोला आज से तुम राज के कोठारी होंगे, ये भंडार की चाबी आज से तुम्हारे पास रहेगी। सब ताजुब हो गए। राजा ने बोले मेरी जो पसंदगी है वो बिल्कुल अव्वल है, ये आदमी ने अपनी परीक्षा में अव्वल नंबर से परीक्षा पास की है और मैं मानता हूँ कि राज्य के कोठारी के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए जो राज्य की संपत्ति से विचलित ना हो, लोभ ना हो और संपत्ति चुरा के अपनी संपत्ति बढ़ा के और पैसे जुटाने की जिसमें लालच ना हो। अगर राज की तिजोरी से कोई चोरी कर सकता है तो और जगहों पे भी जहाँ मौका मिलेगा चोरी करेगा। तो ऐसी जिम्मेवार जगह पे मुझे सत्यव्रत जैसा आदमी चाहिए जो सच्चा बोलता है और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कभी कुछ लेता नहीं। चोर ये बात सुन के दंग हो गया, उसे लगा कि आज एक सत्य बोलने की जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी संत पुरुष के सामने, उसने कितना बड़ा फल दे दिया। मैंने तो समझा था कि सच्चा बोलना है और कुछ उसमें है ही नहीं, वो कम से कम व्रत तकलीफ वाला व्रत है। तो मैंने सच्चा बोलने का, सच्चा आचरण करने का व्रत लिया था और उसी का मैं पालन कर रहा था और कोई उसमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं ली मैंने और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। और उसने मुझे एक चोर के जगह से, गिरी हुई जगह से उठा के राज दरबार में कोठारी के आसन पे बिठा दिया। बोले ये अगर आप जो भी व्रत लेते हो वो व्रत का प्रभाव है जिसको आप पूरी कमिटमेंट से, पूरी प्रतिबद्धता से आप उसका पालन करते हो और कोई भी अपेक्षा के बिना पालन करते हो। संत पुरुष से उसे नहीं पूछा था कि ये सत्य का व्रत मैं रखूंगा तो क्या होगा। तो चोर धन्य हो गया, उसने बोला कि संत पुरुष का जो व्रत है इससे ज़्यादा फल मुझे कोई दे ही नहीं सकता था। और तब से वो राज्य का कोठारी बन के राज्य में जो और अधिकारी थे, प्रधान जी थे, सेनापति जी थे, उसकी हरोल में उसे राज्यसभा में राजा ने बैठने का और शाही पोशाक से और तलवार से उसका सम्मान करके पगड़ी बंधा के राजा ने उसको उसका स्वागत किया और बोला जाओ इसके परिवार को बुला ले आओ, जहाँ कोठारी जी रहते थे वो महल में अब ये रहेंगे और कोठारी जी के परिवार का इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसीलिए इनको रहने के लिए एक छोटी सी जगह राज की ओर से दी जाएगी। तो ये न्याय राजा का सुन के पूरी सभा साधु साधु बोल उठी। यही फल है सच बोलने का। सच बोलना आसान नहीं है, कई लोभ लालच और प्रपंचों से ऊपर उठना पड़ता है, मगर जो उसका पालन करता है वो सत्यव्रत की तरह हमेशा एक समय ऐसा उसका रिवॉर्ड यानी बदला पाता है जिसे पाकर वो धन्य हो जाता है। तो दोस्तों ये आज की जो बात थी यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे फिर एक और वार्ता के साथ, एक और कथा के साथ, जिसमें कुछ बोध छिपा हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपका आने वाला समय प्रसन्नता से और सुख से बीते, सच के मार्ग पर चले और खुश रहे। धन्यवाद।